ओम शांति। किसी गांव के एक पनघट पर एक दिन एक सन्यासी पहुंचा। क्योंकि वो थक गया था तो एक पत्थर पर उसने अपना सर रख दिया और सो गया। थोड़ी देर में वहां पर पानी भरने के लिए पनिहारिन, जो कुएं से पानी भरती है, वह स्त्रिया वहां पहुंची और एक स्त्री कहने लगी, संन्यास ले लिया है परंतु तकिए का मोह अभी तक नहीं गया है। तो सन्यासी ने यह बात सुन ली और सुनते ही उसने वो पत्थर उठा के फेंक दिया। तो दूसरी जो पनिहारिन, जो स्त्री थी, उसने कहा, सन्यास ले लिया है परंतु क्रोध अब तक नहीं गया है। कैसी तेजी से पत्थर उठा के फेंक दिया। सन्यासी सोचने लगा, अब क्या करूं। तो तीसरी पनिहारिन कहने लगी, हम स्त्रियां तो यहां आएगी और जाएगी, हमारी बातें सुनकर तुम अपना मार्ग क्यों बदलते हो, अपनी साधना क्यों छोड़ते हो। परंतु एक चौथी एक स्त्री थी, उसने एक अद्भुत बात कह दी। उसने कहा, यह जगत तो पाखंडी ही है, चाहे वो तुम्हें कुछ भी कहे, क्या भी कहे, तुम अपना हरिनाम लेते रहो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर इस संसार में कोई आंखें ऊपर करके चलता है तो दुनिया वाले कहते हैं कितना अहंकारी है, अभिमानी है। अगर कोई नीचे आंखें करके चलता है तो दुनिया कहते हैं कम से कम ऊपर तो देखो। अगर कोई चारों ओर नजर घुमाकर चलता है तो दुनिया कहती है इसकी नजर का ठिकाना नहीं है। अगर कोई आंखें बंद करके रहता है तो कहते हैं ढोंग कर रहा है ध्यान का। और अगर परेशान होके आंखें ही फोड़ दे तो दुनिया कहती है कर्मों का हिसाब किताब है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग। चाहे हम कुछ भी करें, इस संसार के लोग या मनुष्य की ऐसी वृत्ति है कि दूसरों को रोकेंगे, टोकेंगे, टीका करेंगे, टिप्पणियां करेंगे। और यदि कोई किसी नियम पर, मर्यादा पर, विधि और विधान पर चलता है तो उसे उसके मार्ग से हटाने के लिए सब कुछ करेंगे। जगदीश भाई कहते थे, नाक कटे पंथ। एक ऐसा पंथ है जो अपनी नाक ही काट देते हैं और उनका लक्ष्य होता है कि सभी हमारे जैसे हो जाएं। अगर कोई दूसरा कुछ भी करे तो उन्हें स्वीकार नहीं है सारे जगत में। जब अपवित्रता छाई थी, विकारों का बोलबाला था, ऐसे समाज में भगवान का आना और पवित्रता की स्थापना करना, और जो जो इस मार्ग पर चलेंगे फिर संसार के लोगों की क्या प्रवृत्ति होती है, उसका विरोध करना, उपहास करना, निंदा करना, ग्लानि करना। परंतु हाँ, एक समय आएगा जब उन्हें वो स्वीकार करना पड़ेगा। आज तक संसार में जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हुई है, आध्यात्मिक क्रांतियां हुई है, हर संस्था को, हर धर्म को 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उपहास, हंसी उड़ाते हैं लोग। दूसरा विरोध, अपोजिशन। और तीसरा एक्सेप्टेंस, स्वीकार। परंतु इससे पहले कि समाज स्वीकार करे, सबसे पहले क्या करता है, हंसी उड़ाता है, विरोध करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, सब कुछ करता है, बाद में स्वीकार्य। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है उसका मूलभूत आधार संपूर्ण पवित्रता है। ऐसे वो कौन से नियम है और कौन सी मर्यादाएं हैं जो स्वयं भगवान ने आकर रची है, आज हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। वो सभी मर्यादाएं आप सभी जानते हैं, परंतु बार बार उन्हें स्मरण करना, बीच बीच में उन्हें चेक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं। आज सुबह मुरली सुनी ना, कौन है हम सभी, इस जगत के आधार मूर्त है, हमारे द्वारा उद्धार होना है जगत का, इसलिए हम उदाहरण मूर्त भी है, अचल मूर्त है। हमारा जागृत रहना बहुत आवश्यक है, हमें संसार को जगाना है, अज्ञान की नींद से जगाना है, आलस अल्पेलेपन और विस्मृति की निद्रा से जगाना है, और हम जागते हैं ज्ञान से। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कुछ नियम हैं। आज हम एक विहंगम दृष्टि इन नियमों पर और इन मर्यादाओं पर डालेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं और नियमित मुरली सुनते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, इस विश्वविद्यालय की जो दिनचर्या है उसमें सबसे पहला नियम कौन सा है, अमृत वेला। सुबह का जो समय है, उठते ही तुरंत जो समय होता है, साइकोलॉजी में बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर हुई है कि हमारा जो मन है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, 2 बार जैसे वो द्वार है बीच में, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, बाह्य मन, अंतर मन, मेल माइंड, फीमेल माइंड, ऑब्जेक्टिव माइंड, सब्जेक्टिव माइंड, सादी भाषा में बाह्य मन और अंतर मन। 2 मन नहीं है, एक ही मन 2 तलों पर काम करता है। बीच में जैसे एक बैरियर है, प्री कॉन्शियस। हम सारा जो ज्ञान लेते हैं चेतन मन में, वो अवचेतन तक यदि पहुंच जाए सब कॉन्शियस में, तो फिर अपने आप सब होता है, जिसको हम कहते हैं आदत बन गई या संस्कार, जब पक्का हो जाता है। जो सुबह आज या कल उदाहरण दिया था उस सेनानी का, सिपाही का, अटेंशन वाला, वो अवचेतन में चला गया था अपने आप प्रैक्टिस से। तो सुबह का जो समय होता है, पहले 5 या 10 मिनट, ये जैसे प्रीकॉन्शियस खुल जाता है और जो भी डाला जाता है सीधा सबकॉन्शियस उसे स्वीकार कर लेता है, अवचेतन। एक तो सुबह और दूसरा रात को सोने का समय, जब बिस्तर पर हम लेट जाते हैं, जिन जिन विचारों के साथ हम सोते हैं, सोते समय का अंतिम संकल्प ही उठते समय का पहला संकल्प होता है। बाबा ने दोनों ही मर्यादाएं बताई है, उठते ही क्या करो और सोते समय क्या करो, किस हालत में सो रहे हो, क्या करते हुए सो रहे हो, टीवी देखते हुए सो रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सो रहे हो, सोशल मीडिया पे लगे हुए बात करते करते सो रहे हैं, चिटचैट करते सो रहे हैं, क्या करते हम सो रहे हैं, या प्रभु की याद में सो रहे, या अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन करते हुए सो रहे, या योग करते करते सो रहे हैं, किस अवस्था में हम सो रहे, उसी अवस्था से फिर हम उठेंगे और वैसा ही अमृत वेला होगा। फिर से आते हैं अमृत वेला, अमृत की वर्षा होती है यहां पर। मधुबन में बहुत समय पहले भारत के जो चीफ जस्टिस थे कृष्णा अय्यर, एक बार वो आए थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, बहुत सारी किताबें लिखी है लॉ के ऊपर। उनकी आदत थी 2 बजे उठने की, और 2 बजे उठकर वो अपनी किताबें लिखते थे, अपनी स्टडी करते थे। जब मधुबन में आए तो मधुबन में प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, वो बीच से उठ के आ जाते थे। वो कहते थे कि नहीं, मेरे ये सोने का समय है, बस 9:30। आपके कल्चरल प्रोग्राम के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मैं अपना सुबह का समय नहीं गवा सकता, मेरी जो दिनचर्या है वो बनी हुई है। उसे कोई भगवान को याद नहीं करना था सुबह उठकर, उसे अपनी किताबें लिखना, अपना पढ़ना, उसकी अपनी आदत थी। तो एक संसार का व्यक्ति कितना संयमित और नियमित उठने का अपना समय बना लिया है। हमें परमात्मा आदेश है, भगवान की आज्ञा है, सुबह सुबह उठो, उठ के मुझे याद करो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, उस समय संसार के विकारी जो वाइब्रेशंस है वायुमंडल में, वो शांत होते हैं। संसार में विकारी आत्मा है चारों ओर, उस समय सोई होती है, थोड़े कम होते हैं वायुमंडल में वाइब्रेशंस। सारे दिन भर नेटवर्क जाम होता है, आत्मा ऊपर उड़ने के लिए थोड़ा क्लियर चाहिए वातावरण। इसके लिए भक्ति में भी कितना गायन है, भक्त सुबह सुबह उठ जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। जिन्होंने भक्ति की होगी उनको खुद ही अनुभव होगा, किस किस ने की है बहुत ज्यादा भक्ति, बहुत सारी है, माताएं ज्यादा है, और गुरु किस किस ने किया भक्ति में, गुरु भी बहुतों ने किया, भाइयों ने कम किया। वो कहते हैं हम ही गुरु है जगत के, हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। सुबह सुबह उठकर अपने मां बाप को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, भक्ति में गुरु की वंदना करते हैं। तो ऐसा अमृत वेला यहां स्वयं भगवान भोले भंडारी के रूप में आता है, जो चाहिए वो खजाना ले जाओ, ले लो। बाबा कहते हैं मुरलियों में कई बार आता है, खजाना खुला, खजाना में एक चाबी है, चाबी है मेरा बाबा। कुछ मुरलियों में लॉक लगा ही नहीं है, खजाना खुला है, जो चाहिए वो ले लो। तो परमात्मा प्रेम की अमृत वर्षा सुबह सुबह होती है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरियम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। वो समय है अपने आप को इस भूत संग, ये जो देह है, कलेवर है, इससे स्वयं को डिटैच करना, उसको अपने आप को प्रातः स्मरामि इस आत्म तत्व पर केंद्रित हो जाना, और जो जो अयात्मा है, जो आत्मा नहीं है, यह देह, यह संसार, उससे अपने आप को अलग करना। तद ब्रह्म निष्कलमहम, वह निष्कलम चित्त में स्थिर हो जाना, यह सुबह का काम है। तो अमृत वेले अभी तक यदि नियमित नहीं है हम, तो सबसे पहला काम तो अमृत वेले पर करना है। अमृत वेले बाबा ने कहा, गाड़ी पटरी पर डाल दो, सारे दिन भर अपने आप चालू रहेगी। कब कब संभालोगे, कब क्या बोलना है, किसको क्या कहना है, कौन से कर्म करना है, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न भिन्न है दिन भर। क्या परिस्थिति आएगी हमें पता नहीं। बाबा कहते थे डबल इंजन। तो इस नियम को मजबूत करना है, पक्का करना है। ऐसे यहां पर कितने हैं जिन्होंने पिछले एक तारीख से लेकर आज तक एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, वो हाथ खड़ा करो। बहुत सारे हैं, परंतु बहुत सारे नहीं भी हैं। अव्यक्त मास चल रहा है, एक दिन भी मिस ना हो। ऐसे कितने हैं जिन्होंने एक दिन भी भोजन नहीं किया? सबने किया है हर दिन। आत्मा का भोजन ज्ञान है और योग है। यदि ये भोजन उसे नहीं कराओगे, भूखे भजन न होए गोपाल, तो गोपाल का भजन कैसे होगा? तो सबसे पहला नियम अमृत वेला। इसका विस्तार तो बहुत किया जा सकता है, परंतु समय का अभाव है। दूसरा मुरली, सेंटर पर आकर मुरली सुनना, उस वातावरण में आना, उस संगठन में आना, उस सत्संग में आना, इसका महत्व है। मुरली तो घर पर भी पढ़ी जा सकती है, मोबाइल में भी पढ़ी जा सकती है, सुनी भी जा सकती है घर पर। आजकल साधन इतने अधिक है कि सब कुछ किया जा सकता है, परंतु वहां आकर सुनना, इसका अपना महत्व है। उस वाइब्रेशंस में आना, उस वायुमंडल के बीच आना, उस पवित्र स्थान पर आना, वहां आके सुनना, ये नियम है इस यज्ञ का। यज्ञ का इतिहास यदि देखो तो कैसी दादियां, कैसी दीवानी थी मुरली के लिए। तो वहां आना और फिर पढ़ना, सुनना। दूसरा एक नियम है मुरली पढ़ना भी, केवल सुनना नहीं, सेल्फ स्टडी भी आवश्यक है। 24 घंटे में एक बार हम मुरली अच्छे से पढ़े, अध्ययन करें। शास्त्रों में लिखा गया था स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निनिध्यासन, ये तीन बातों की चर्चा। पहले सुनना, श्रवण, फिर मनन, और फिर प्रैक्टिकल में लाना। ये तीन काम करना है रोज। पढ़ना, पॉइंट्स निकालना। बाबा ने कहा है मुरलियों में एकांत में बैठकर पॉइंट्स निकालो और मनन करो। ज्ञान आत्मा को इतना शक्तिशाली नहीं बनाता है, ज्ञान का चिंतन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। हजम भी तो करना है, वो शक्ति मनन की अपने अंदर धारण करनी है। तो दूसरा नियम है मुरली, तीसरा नियम है संपूर्ण पवित्रता। तीसरा नियम संपूर्ण पवित्रता का, एक बार जिस चीज को छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उसे वापस नहीं ले लेनी है। महान आत्माएं जो होती है वो केवल एक बार प्रतिज्ञा करती है, एक बार प्रतिज्ञा कर ली फिर पीछे नहीं मुड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। जब अव्यक्त बाप दादा आते थे मेडिटेशन हॉल में और हिस्ट्री हॉल में, कई बार लाइट चली जाती थी। सुना होगा मुरलियों में ब्रैकेट में लिख के आता है, तो बाबा तुरंत ड्रिल कराते थे, अभी आ रहा है। तो तीसरा नियम यहां का, संपूर्ण पवित्रता की धारणा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा। बिना इस धारणा के ज्ञान बुद्धि में ठहर ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी करे, कितनी बार भी मुरली पड़े और कितनी ही सेवा करे, अंतिम जो मार्ग है वो पवित्रता के लिए, स्थिति के लिए है। हमारे मन में यदि अशुद्ध संकल्प है, विकार के संकल्प है, वासना के संकल्प है, दैहिक आकर्षण है, तो ये ज्ञान नहीं ठहर सकता। इसके लिए फिर से अपनी प्रतिज्ञा को रोज रिवाइज करना है, संपूर्ण पवित्रता। जिस पवित्रता के लिए दादियों ने इतना कुछ सहन किया, उन माताओं ने कितना सहन किया, कितनी मार खाई, क्या क्या हुआ यज्ञ के इतिहास में, जबरदस्ती मांस खिलाया गया। दादियां अनुभव सुनाती है कुछ कुछ माताओं को, कितना कितना दिन भूखा रखा गया। एक दादी का अनुभव है जिसमें दादी बताती है, एक माता को जादूगर बुलाया गया, उसको जो बेड होता है उसके नीचे, उसको उसके ऊपर बेड रखा गया और वो जादूगर उसके ऊपर बैठा, यातनाएं पहुंचाई गई, शारीरिक यातनाएं, जिसका यज्ञ में कहीं वर्णन नहीं है। ऐसी बातें हुई है कि क्या बताए, कितना कितना एक एक माता ने सहन किया है। क्योंकि जब इन माताओं के पति जब विदेश से आए थे, तब तक ये सारी माताएं धरना पर चल पड़ी थी, बहुत सहन करना पड़ा, शारीरिक यातना, मानसिक यातनाएं, ग्लानि, अखबारों द्वारा निंदा, सब कुछ, फिर भी छोड़ा नहीं। इस यज्ञ की स्थापना यहां से हुई है, इसको भूलना नहीं है। चौथा नियम, चौथी मर्यादा है पवित्र भोजन, पवित्र अन्न। वो केवल ये हम नहीं कह सकते कि हमने बाहर का खाना बंद कर दिया। पवित्र भोजन और संयमित भोजन, याद में बनाया हुआ भोजन, भोग लगाया हुआ भोजन, याद में स्वीकार किया हुआ भोजन, उसकी याद में ऐसा जो भोजन है वो हमारे चित्त को शुद्ध करेगा। दुख भंजक भोजन, वैष्णव भोजन, ब्रह्मा भोजन, एक एक कणा मोहर के समान है। इसके लिए इसका उतना महत्व भी, जितना चाहिए उतना ही, हमारी प्लेट में इतना ना ले ले कि बाद में फेंकना पड़े, बोझ है वो भी। इसके लिए ये नियम। अगला नियम, ट्रैफिक कंट्रोल। दिन भर में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, उस समय स्वयं के मन की ट्रैफिक को स्थिर करें, और या तो अशरीरी होने का अभ्यास, या बाबा की याद, या सूक्ष्म वतन में चले जाए, या वो सब भी नहीं हो सकता है तो कम से कम मुरली की पॉइंट याद करने की कोशिश करे उस समय, परंतु रुके अपने मन को। यदि जो नियम बने हुए उस अनुसार हमारी दिनचर्या नहीं है, तो अपना अमृत वेला, अपना ट्रैफिक कंट्रोल हम खुद सेट करें। बहुत यदि बिजी है उस समय, परंतु वो दिखावा ना हो, हमने देखा है शांतिवन में, भोजन करते करते यदि ट्रैफिक कंट्रोल बच जाता है तो बीच में ऐसे कर रहे हैं और बस यहीं रोक जाते हैं। ऐसा ये नहीं हो, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। रास्ते के बीच में खड़े हो गए और गाड़ी उधर से हॉर्न दे रही है दे रही है, उसको भी बता रहे डांट के, अमृत वेला अमृत अपना ट्रैफिक कंट्रोल, ऐसा वाला ट्रैफिक कंट्रोल नहीं। ये कोई बाहरी चीज नहीं है कि बाहर से स्थिर हो जाए या खड़े हो जाए या बैठ ही जाए, ये तो मानसिक क्रिया है। तो इस नियम जो नहीं करते फिर से पक्का करें। अगला नियम नुमा शाम का योग। सुबह तो अमृत वेला कई लोग करते हैं, परंतु शाम का जो समय है 7-7:30 के बीच का या 6:30 से 7:30 का, यह समय हमारा बहुत अच्छा अनुभव में जाना चाहिए। जो अनुभव सुबह होता है अमृत वेले, वैसे ही अनुभव शाम को भी हो। तो नुमा शाम का योग। अगला नियम है सेंटर की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, और सेंटर का जो वातावरण है सेवा केंद्र का, उसे हमें शक्तिशाली बनाना है। यदि हम वहां आकर बिजनेस की बातें करते हैं, पैसों की लेन देन की बातें करते हैं, सांसारिक बातें करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, निगेटिव चिंतन चलाते हैं, तो उस वायुमंडल को हम दूषित कर रहे हैं। इसके लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां का वायुमंडल हमें संकल्पों से भी दूषित नहीं करना है। देहभान के संकल्प, भक्ति में मंदिरों में जाते हैं चप्पल तो निकालते हैं, कोई कोई मंदिरों में बेल्ट भी बाहर निकालने को कहते हैं, चमड़े का नॉट अलाउड। यदि हम ऐसे देहभान के संकल्प लेके जाते हैं तो ये भी अमर्यादा है। अगला नियम गुटबाजी। ऐसा हम न करें कि अपना एक ग्रुप बना ले। ये नियम नहीं है यज्ञ का। हम सब एक संगठित आत्माएं हैं, अपना एक ग्रुप, उनका दूसरा ग्रुप, इस तरह का वायुमंडल हमें नहीं तैयार करना है। या कोई सिमिलर भाषा बोलने वाले, या एक प्रांत के, एक राष्ट्र के, एक देश के, एक राज्य के है, ऐसी गुटबाजी, किसी भी तरह से संगठन का विघटन ना हो, यह नियम है। अगला नियम, जो भी हम प्रोग्राम बनाएं, जो निमित्त आत्मा है उससे पूछ कर ही बनाए। ऐसे नहीं कि सेवा का प्रोग्राम हम खुद ही बना ले और इनको पता ही नहीं, खुद ही प्रोग्राम बना ले, खुद ही अरेंज कर ले, स्थान भी फिक्स कर ले और फिर फोर्स करे उनको कि यही होना चाहिए, ये प्रोग्राम हमने जैसा सोचा है वैसा ही होना चाहिए, इसी रीति से पर्चे बनने चाहिए। भगवान ने ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा है, बहनों के सिर पर रखा है। इसके लिए इन कंसल्टेशन विथ, खुद ही अपनी मनमर्जी करना, जबरदस्ती करना या प्रेशर डालना, फोर्स करना, ये सब नियम नहीं है। अगला नियम, यदि हम किसी और सेंटर पर जाते हैं, सबको पता भी है, परंतु स्वीकृति पत्र लेकर जाए, चाहे दूसरे सेंटर पर रुकते हैं या फिर मधुबन जाते हैं, एक तो सेंटर पर जाना और दूसरा है मधुबन में जाना। मधुबन में हमारी पहचान बहुत है, हम तो वैसे ही चले जाएंगे, हमें किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। पहुंच तो जाओगे, परंतु परमात्मा मिलन इतना सस्ता भी तो नहीं है। कीमत चुकानी होती है। इसके लिए चाहे मधुबन जाए या दूसरे सेवा केंद्र पर जाए, क्या करना है? लेटर लेकर जाए। अगला नियम, प्रिंटिंग। बहुत सारे प्रिंटिंग कर लेते हैं, पर्चे प्रिंटिंग कहो या कोई भी लिटरेचर छपाना कहो या कोई कार्ड्स छपाना कहो, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, हमें जैसा चाहिए वैसे, बोर्ड बनाना कहो, ट्रांसलेट बनाना कहो, अपनी बुद्धि चलाकर। फिर हम कह रहे हैं भगवान ने सेवा केंद्र के निमित्त किसे बनाया है? वह नम्रता का भाव हमारे अंदर हो। और एक दूसरा नियम, अगला, सभी भाइयों के लिए, कल एक बाबा की आवाज में एक कमेंट्री कहो या व्यक्तवाणी सुनी थी, याद है सबको? कौन सी थी? संपूर्ण पवित्रता की। उसमें बाबा ने एक बात कही थी, सुना, कान खोल के सुनो। क्या कहा था बाबा ने? सुना, दोनों ही कान खोल के सुनो। जरा सी भी अपवित्रता सफेद कागज पर काला दाग है। सभी कुमार और सभी भाई, सभी अधर कुमार, इस यज्ञ की जो मुख्य और मर्यादा है वो है पवित्रता। इसलिए यदि सेंटर पर रहने वाली किसी भी बहन के प्रति यदि अपवित्र दृष्टि जाती है, कुदृष्टि जाती है, जो ये बहने हैं ये कौन है? मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही ये सभी बहने हैं। सोचो, यदि मंदिर में कोई पुरुष जा रहा है देवी के और उसकी दृष्टि खराब हो जाए उस देवी के प्रति, तो उसे खुद कैसे लगेगा? खराब लगेगा ना। और यदि ये बात वहां के लोगों को पता चल जाए, मंदिर के पुजारी को, तो क्या करेंगे उसके साथ? उसको पीट कर बाहर निकाल देंगे। वो तो जड़ मूर्तियां है, ये चेतन मूर्तियां है, परमात्मा के चरणों में प्रभु अर्पण जिन्होंने अपने यौवन को कर दिया है, उन्हें साधारण आत्मा समझने की भूल मत करना। ईश्वर के प्रति अपने जीवन को अर्पण करने वाली यह अर्पिताए, निवेदिताए और समर्पिताए इस संसार की सबसे महान आत्माएं हैं। दांव पर लगाया है, अपने जीवन को यज्ञ की वेदी पर समर्पित किया है, स्वयं को। चाहते तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे संसार में, नौकरी कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे, पद की कामना रख सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, इंडिपेंडेंट हो सकते थे, गृहस्थी कर सकते थे। इसलिए चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी कम पढ़ी लिखी क्यों ना हो, चाहे उसमें कितने ही अवगुण क्यों ना दिखाई दे, ये नहीं भूलना कि स्वयं भगवान ने उन्हें चुना है इस संगम युग पर। इसलिए यदि किसी भाई की कुदृष्टि जाती है तो इसे क्या कहेंगे। और यदि कोई माताओं में से या बहनों में से कोई ये समझता है कि हम तो पढ़ी लिखी है और हम कमाते हैं, हमें हमारे पास अकल ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, इन बहनों को इतनी समझ नहीं है, संसार का इतना अनुभव नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है, ये मत भूलना विकारों के चक्की में पिसी हुई जो आत्माएं हैं, विकारों में जो गई हुई है आत्माएं, विकारों की जो स्मृतियां है, चाहे ज्ञान में भी आ गए तो भी जाती नहीं है। और ये वो आत्माएं हैं अनटच्ड, बाल ब्रह्मचारिणी, जिनके सामने सारा जगत झुकता है, ये वही है। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम इनसे बड़े हैं। हाँ, हो सकता है किसी का स्वभाव, किसी का संस्कार ऐसा है, परंतु फिर भी निमित्त स्वयं भगवान ने बनाया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके मुख से वही बोल रहा है। ऊपर से लग रहा है शायद यह गलत है, परंतु उसी में शायद हमारा परम कल्याण है। इसलिए इस नियम को, हमारी दृष्टि कैसी है, इस नियम को पक्का करना है। सभी भाई पक्का करेंगे प्रतिज्ञा आज से, संपूर्ण प्रतिज्ञा। रात को सोते समय के लिए क्या करना है, एक तो याद में सोना सबको पता है, थोड़ा सा अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन करके फिर सोना, अपना जो कमरा है उसको भी सतो प्रधान बनाना है। यदि किसी को विकार के स्वप्न आते हैं, कोई कुमार या कोई भाई, तो अपने उस बेड को भी पवित्रता के वाइब्रेशंस देना है। हम एक अभ्यास हमेशा कहते हैं कि अपना जो बेड है, बिस्तर है, सप्त कवच, सात ऐसे संकल्प धारण करो, और एक एक जैसे पहरेदार है हमारे बेड के ऊपर, चार कोने हैं, चार यदि कोने हैं, एक कोने पर एक पहरेदार, दूसरे कोने पर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक हमारे सर के पास, एक यहां बीच में, एक यहां बीच में, ऐसे सप्त संकल्प। पहला, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, सोते समय यह संकल्प करने, जब बेड पर लेट गए हैं तब कोई भी अपवित्र संकल्प मेरे मन में नहीं आ सकता, ना स्वप्न आ सकता है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। दूसरा, मैं साक्षी हूं, उपराम हूं, दिन भर में जो भी हुआ अब उन सब से साक्षी हूं, सबसे अलग। तीसरा, मैं बेहद का वैरागी हूं, कोई राग नहीं, कोई मोह नहीं। अगला, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, जो आज बाबा ने कहा कर्मेंद्रिय जीत ये पहली पौड़ी है। अगला, मैं अनासक्त आत्मा हूं, किसी से मेरी कोई आसक्ति नहीं, ना कोई व्यक्ति से ना वस्तु से। अगला, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तियों से सुसज्जित हूं, कोई भी कमजोर संकल्प स्वप्न मेरे मन में नहीं आ सकता, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के साथ सोना है। और एक, मैं जैसे इस संसार से परे उस परम धाम का निवासी हूं, यहां से मुझे कोई लेना देना नहीं, निमित्त मात्र केवल सेवार्थ यहां रुके, सेवा हुई वापस, आज सुबह की मुरली, आवाज में आना और आवाज से परे जाना, कहा स्टॉप, स्टॉपिंग पावर और स्टार्टिंग पावर, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। संकल्पों का विस्तार, संकल्पों को स्टॉप, ऐसे नहीं कि कहो स्टॉप और स्टार्ट हो जाए। हम यहां पर केवल सेवार्थ है, मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं अवतरित आत्मा अभी अभी इस तन में आई हूं, किस लिए? सेवार्थ, सेवा पूरी, काम पूरा। इस घर में अभी अभी आई हूं केवल इन आत्माओं की सेवा करने के लिए, पति की, पत्नी की, बच्चों की, बस, बाकी मेरा कोई काम नहीं है। तो ये सोने की विधि, इन संकल्पों के साथ सोना, परमात्मा छत्र छाया में सोना, जैसे उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। कई लोग हमने देखा है जो बेड होता है जहां सोते हैं ऊपर ही शिव बाबा का ये लगा देते हैं चित्र, सोते समय उसको देखते देखते सो जाए, जैसे उसकी किरणें ऊपर से आ रही है मुझ पर, और मेरा ये संपूर्ण देह भी पावन हो रहा है। तो ऐसे ये कुछ नियम है और कुछ मर्यादाएं हैं। ओम शांति।